निराला की क्रांतिकारी चेतना या निराला जी विद्रोह के कवि हैं। चौथा भाग, कविवर निराला के कविताओं में जनमानस के अशांत छायावाद का जन्म सन 1919 के आसपास में घटित होने वाली दो महत्वपूर्ण घटना है, महायुद्ध में होने वाले संहार का भयावह प्रभाव तथा जलियांवाला बाग का हत्याकांड। प्रथम के फलस्वरूप विज्ञान के प्रति आस्था हिल उठी और चिंतन पद्धति परोक्ष सत्ता के प्रति उन्मुक्त होकर रहस्यात्मक हो गई। जलियांवाला बाग एवं रॉलेट एक्ट जैसी घटनाओं ने भारतीय जनमानस को निराशा से भर दिया। फलतः भावुक प्रबुद्ध व्यक्तियों की वृत्ति अंतर्मुखी हो गई। यथार्थ जगत के स्थान पर कल्पना लोक में अपने आदर्शों की पूर्ति का सुख स्वप्न देखने लगे। उनका यथार्थ जीवन निराशा और वेदना का कहानी बन गया। इसी बात को डॉ. रामविलास शर्मा ने साम्यवादी परिवेश में इस प्रकार कहा है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन चौथी नैतिकता रूढ़िवादी और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है, परंतु यह विद्रोह मध्यवर्ग के तत्वाधान में हुआ, इसलिए इसके साथ मध्यवर्गीय असंगति पराजय और पलायन की भावना जुड़ी हुई है। इन्हीं दिनों राजनीतिक आंदोलन अंग्रेजी शासक को जड़ मूल से समाप्त करना चाहता था। सामाजिक आंदोलन धार्मिक एवं सामाजिक रूढ़ियों को समाप्त करने पर तुले थे। इन सब का समग्र प्रभाव यह पड़ा कि काव्य क्षेत्र में स्वच्छंदतावाद का समावेश हो गया। द्विवेदी युग में ज्ञान विज्ञान के प्रति रुचि होने के कारण अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन को बल मिला। फलतः 19वीं शताब्दी के अंग्रेजी रोमांटिक साहित्य ने हमारे तरुण भावुक कवियों को प्रभावित किया और अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों की शैली पर तरुण काव्य प्रणयन का सूत्रपात हुआ। ज्ञातव्य है यह है कि अंग्रेजी रोमांटिक कवियों के उत्साह एवं उल्लास का हमारे कवियों में अभाव था। अंग्रेजी रोमांटिक साहित्य के पीछे फ्रांस की क्रांति एवं इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति की सफलताओं का उल्लास था। हिंदी कवि की स्वतंत्रता आंदोलन की विफलता उत्पन्न वेदना एवं निराशा द्वारा पीड़ित थे। एक बात और, पाश्चात्य चिंतन के साथ जनतंत्र के भाव आए थे और व्यक्ति एकदम अत्यधिक महत्वपूर्ण बन गया था। छायावाद के कवियों के काव्य में अभिव्यक्त व्यक्तिकता को इसी जनतंत्रात्मक स्वातंत्र का परिणाम समझना चाहिए। सामाजिक आंदोलनों ने नारी उत्थान, नारी सम्मान, नारी स्वातंत्र के भाव जागृत कर दिए थे। द्विवेदी युग की नारी महिमा मंडित देवी के रूप में आराध्य बन गई थी, परंतु इस युग में फ्रायड प्रवृत्ति मनोविश्लेषकों के प्रभाव के कारण वह अपने इस आसन पर न रह सकी और वह प्रेयसी बन गई। छायावाद के युग में नारी को विभिन्न रूपों में देखने की जो प्रवृत्ति है उसके पीछे नारी के प्रति सहानुभूति एवं नारी को प्रेयसी के रूप में देखने की मनोवृत्ति की प्रधानता माननी चाहिए। नारी प्रगति और प्रेम की त्रिवेणी भावुक हृदय की प्रेरणा रही है। छायावाद के कवि ने भी प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए जहाँ नारी को देखा वहाँ उसने रहस्यात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए नारी को अपना माध्यम बना लिया। दाम्पत्य प्रेम द्वारा रहस्य की भावना की अभिव्यक्ति अत्यंत प्राचीन परंपरा है। इस प्रकार छायावाद के अंतर्गत नारी प्रकृति और परोक्ष सत्ता परंपरा इतने घुले हुए हैं कि सर्वत्र उन्हें पृथक करना संभव नहीं है। छायावाद का जन्म अपनी युगीन परिस्थितियों की देन है। अंग्रेजी काव्य से प्रभावित होकर उसने वह रूप धारण किया जो किसी सीमा तक पाश्चात्य है और जिस कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे प्रबुद्ध आलोचकों ने उसकी पाश्चात्य नकल में की जाने वाली उछल कूद तक कह डाला। पर वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। छायावादी काव्य अपने आप में संपूर्ण मानव जीवन एवं समसामयिक चिंतन को समेट कर चला है। राजनीति के क्षेत्र में फ्रांस की क्रांति और सामाजिक क्षेत्र में इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति रोमांटिक काव्य की प्रमुख प्रेरणाएं हैं। साहित्य के क्षेत्र में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के कतिपय प्रभावशाली कवियों के काव्य जीवन की नवीन विधाएँ विशेष प्रेरणाप्रद सिद्ध हुई हैं। इन कवियों ने व्यक्तिगत आह्लाद और विषाद की अभिव्यक्ति की तथा प्राचीन आख्यानक गीत लिखकर अतीत के प्रति विशेष मोह उत्पन्न किए हैं। इनमें बार्टन, बर्नस और पर्सी के नाम उल्लेखनीय हैं। सन 1878 में वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने शास्त्रीय ढंग के ढंग की काव्य परंपरा के परित्याग एवं वैयक्तिकता की अनवरुद्ध अभिव्यक्ति का क्रम प्रारंभ किया। इन कवियों ने 18वीं शताब्दी की काव्य भाषा का परित्याग किया तथा प्रतीकों और बिंबों का नवीन रूप प्रस्तुत किया। उनकी भाषा में संगीतात्मकता, चित्रात्मकता और व्यंजकता का विशेषता समावेश हुआ। हिंदी कविता में रोमांटिक विद्रोह का आरंभ करने वाले जयशंकर प्रसाद थे। इंदु में प्रकाशित लेख में उन्होंने काव्य रचना के लिए व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति आवश्यक बताई है। उनकी रचनाएं झरना, आंसू, लहर और कामायनी इसी विचारधारा के व्यवहारिक रूप हैं। इनमें द्विवेदी युगीन बुद्धिवादिता का अभाव है तथा मस्तिष्क की अपेक्षा हृदय को कहीं अधिक महत्व प्रदान किया गया है। पल्लव की भूमिका में सुमित्रानंद पंत ने प्राचीन और परंपरा के प्रति विद्रोह तथा स्वच्छंदतावाद को साकार कर दिया है। उनकी कृतियाँ वीणा, पल्लव और गुंजन इनके उदाहरण हैं। गीतिका के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने काव्य की बंधनमयता की छोटी राह छोड़कर चलने का प्रतिपादन किया है। निराला की स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का रूप यह था, आज हो गए ढीले सारे बंधन, मुक्त हो गए प्राण, नवजीवन की प्रबल उमंग जा रही है मिलने के लिए, पार कर सीमा प्रियतम असीम के संग, धारा परिमल से। सुमित्रानंदन पंत ने छायावाद को घोषणा पत्र मैनिफिएस्टो प्रस्तुत किया था। इस अर्थ में छायावाद के वे प्रवर्तक हैं। पंत के ऊपर अंग्रेजी रोमांटिक कवि शैली का गहरा प्रभाव है। पंत शैली की भांति प्रकृति के उपासक हैं। उन पर प्लेटो के आदर्शवाद का भी प्रभाव है। शैली के अनुसार समय का अवगुंठन विश्व के जतकर्ष विधान में बाधक है। इस अवगुंठन का निवारण होते ही वसुधा पर स्नेह और प्रेम का साम्राज्य स्थापित हो गया। पल्लव और गुंजन की अनेक कविताओं में उक्त विचारधारा की अभिव्यक्ति हुई है। पंत मानव विकास के लिए मूल प्रवृत्तियों का उन्नयन आवश्यक मानते हैं। ज्योत्सना में कवि ने शरीर से आत्मा की ओर ले जाकर संसार में सुख शांति स्थापित करने का सुख स्वप्न देखा था। इस प्रकार पंत द्वारा प्रवर्तित छायावाद एक आदर्शवादी काव्य धारा है, जिसमें वैयक्तिकता, रहस्यात्मकता तथा प्रेम की सबल अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ वस्तु और शिल्प अथवा भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही क्षेत्रों में नवीनता का संदेश लेकर छायावाद का आगमन हुआ। इसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ एवं शैलीगत विशेषताएँ निम्नलिखित हैं। का वस्तुगत प्रवृत्तियाँ, पहला वैयक्तिकता तथा आंतरिक अनुभूति, दूसरा विद्रोह का स्वर स्वच्छंदतावाद, तीसरा देश प्रेम की अभिव्यक्ति, चौथा धूमिल पारलौकिकता अथवा रहस्य भावना, पांचवा निराशा एवं वेदना, जिसे हम करुणा की अभिव्यक्ति कह सकते हैं, इसे दुखवाद भी कह सकते हैं, छठा प्रकृति के प्रति प्रेम, सातवां सौंदर्य एवं श्रृंगार भाव की अभिव्यक्ति, आठवा नारी का नया रूप, नौवां नवीन मानवतावादी जीवन दर्शन। ख शिल्पगत विशेषताएं, छायावादी की कविता कल्पना प्रधान होने से बहुत कुछ अस्पष्ट भाव जगत से संबंधित रहे हैं। इस कारण उसका भाषा शिल्प भी उसी के अनुरूप कोमल और अस्पष्ट छायावाद की भाषा शैली संबंधित विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला कोमलकांत संस्कृतनिष्ठ पदावली, दूसरा भाषा में संगीतात्मकता, तीसरा शब्द विधान में ध्वन्यात्मकता, चौथा लाक्षणिकता, पांचवा अलंकारिता, छठा प्रतीकात्मकता, सातवां मुक्त छंद का प्रयोग। छायावाद के विरुद्ध आपेक्ष, छायावाद का काव्य प्रधानता गीतात्मक ही रहा है। इसने हमको दो नवीन वस्तुएं प्रदान की, गीत प्रबंध और मुक्तावृत्त प्रबंध। कुछ आलोचकों ने इसका विरोध किया। इसके विरुद्ध तीन प्रमुख आक्षेप लगाए गए, वैयक्तिकता, पलायन भावना और अस्पष्टता। कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये तीनों आपेक्ष बहुत कुछ सही हैं। विद्रोह का स्वर एवं स्वच्छंदता, प्राचीन एवं परंपरा के विरुद्ध विद्रोह तथा स्वच्छंदता का वर्ण अंग्रेजी रोमांटिक काव्य तथा हिंदी के छायावाद के काव्य की मूल प्रेरणा रही है। निराला जी की अन्य छायावादी कविताओं की अपेक्षा कहीं अधिक विद्रोही एवं स्वच्छंदता के प्रेमी रहे हैं, वह तो वस्तुतः जीवन पर्यंत विद्रोही एवं संघर्ष करते रहे। अपरा की नई कविताओं में यह प्रवृत्ति मुखर है तथा घन गर्जन से भर दो वन तरु तरु पादप पातन तन, गर्जो हे मंद्र वज्र स्वर थर राय भूधर भूधर इत्यादि, गर्जन से भर दो वन। सरोज स्मृति में निराला ने स्वच्छंदता प्रियता का स्वर अस्पष्टतः मुखर है, पर पूर्ण रूप प्राचीन भार ढोते मैं हूँ अक्षम, तुम करो ब्याह तोड़ती नियम मैं सामाजिक योग के प्रथम, लग्न के पढ़ूंगा स्वयं मंत्र यदि पंडित जी होंगे स्वतंत्र। देश प्रेम की अभिव्यक्ति। देश के सांस्कृतिक पतन की ओर निराला जी ने बड़ी ओजस्वनी भाषा में इंगित किए हैं। उनका कहना है कि देश के भाग्याकाश को विदेशी शासन के राह ने ग्रस रखा है। वह चाहते हैं किसी प्रकार देश का भाग्योदय हो और भारतीय जनमन आनंद विभोर उठे। भारतीय वंदना, जागो फिर एक बार, तुलसीदास, छत्रपति शिवाजी का पत्र आदि कविताओं में निराला जी ने देशभक्ति के भाव प्रकट किए हैं। सोचो तुम, उठती है नग्न तलवार अब स्वतंत्रता की, कितने ही भावों से याद दिलाकर दुख दारुण परतंत्रता का, फूंकती स्वतंत्रता निज मंत्र से जब व्याकुल कान, कौन वह सुमेरु जो रेणु रेणु न हो जाए। छत्रपति शिवाजी का पत्र। निराला ने कई स्थलों पर समाज सुधार के प्रति अपनी चेतना की अभिव्यक्ति प्रदान की है। ये कान कुब्ज कुल कुलांगर खाकर पत्तल में करे छेद, इनके कर कन्या अर्थ खेद, इस विषम बेली में विष ही फल है। क्रांति अथवा विद्रोह की भावना। प्रगतिवाद कवि यह क्रांति लाना चाहता है जो समाज के सारे शोषण और अंधरूणियों को समाप्त करना चाहता है। बादल राग शीर्षक कविताओं में बादल शोषकों के विनाशक के रूप में प्रस्तुत हुआ है। निराला जी श्यामा का आह्वान करते हुए कहते हैं, एक बार बस और नाच तू श्यामा, सामान सभी तैयार, कितने ही हैं असुर चाहिए तुमको कितने हम, कल देखना मुंड मालाओं के बन मन अभिराम, एक बार बस और नाच तू श्यामा। विरोधी तत्वों का संघर्ष। इस रचना में सत असत वृत्तियों का संश्लिष्ट स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। इसमें आशा निराशा, जय पराजय, सुख दुख, संघर्ष निर्वेद, लोकोत्तर जिज्ञासा और ऐहिक मांगल्य के लिए सकर्मकर्ता का मिला जुला हुआ अद्यंत लक्षित होता है। इस काव्य में समस्त मानसिक स्थितियों की सुंदर व्यंजना हुई है। इसमें जहाँ एक और मानव मन की इन विरोधी वृत्तियों का चित्रण हुआ है, वहाँ काव्य में स्वाभाविकता भी आ गई है। राम के हृदय में विषाद और क्षोभ के बादल छाए हुए हैं। असमर्थ मानवता मन उद्दत हो हार हार, परंतु तुरंत ही उसके साथ साथ आह्लाद की भावना भी है, जिसके फलस्वरूप राम को इस समय में विजय प्राप्त होगी। वह एक और मन रहा न राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विजय, कर गया भेद वह माया वरण प्राप्त कर जय। यह विजय रावण पर राम की नहीं बल्कि असत पर सत्य की विजय है। अतः निराला एक युगदृष्टा कलाकार थे। उनके भाव हृदय ने जब यह देखा कि कल्पना लोक के आदर्शों का यथार्थ संसार के तनिक भी मेल नहीं है, तो उन्हें गहरा धक्का लगा। उनकी पीड़ा यह देखकर और बढ़ गई कि लोग अपनी क्षुद्रताओं पर संकुचित होने के स्थान पर गर्व ही करते हैं। यह सब देखकर उन्होंने तीखी व्यंग परक कविताएं लिखी और उनकी व्यंग की मार से कोई न बचा। निराला की व्यंगात्मकता के संबंध में डॉक्टर रामविलास शर्मा का यह कथन पूर्ण सत्य है कि ऐसा अशिष्ट व्यंग सच्ची अंतर्व्यवस्था से निकला हुआ है जो पढ़ते ही सब हृदय को प्रभावित कर सके, साहित्य में बहुत कम देखने को मिलता है। हिंदी के आधुनिक युग का छायावाद, क्रांति का वह मिसाल जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनाया, वह विद्रोह के जनक के रूप में उभर कर हमारे समाज को पुष्ट पुष्पित एवं पल्लवित करता है। यह भाग यहीं पर समाप्त होता है।